भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए लाशत विघ्न है। हरेक आदमी को भगवान के साथ संबंध जोड़ ही देना चाहिए कि भगवान दिखते नहीं है तो भगवान नहीं दिखते हैं तो अच्छे महापुरुष हुए उनके साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए कि आजकल अच्छे महापुरुष भी नहीं है जिनमें हम श्रद्धा कर सके। वो तो चाहे कितने अच्छे होंगे पर हमारी श्रद्धा नहीं बैठती। तो कहते हैं जो पहले कोई महापुरुष हो गए जो आपको अच्छे लगते हैं जिनमें अपनी श्रद्धा बैठती है उन महापुरुषों से संबंध कर लो कि वो तो अब है ही नहीं। वो अब नहीं है परंतु उनके साथ मानसिक संबंध हो जाएगा तो वो भगवान अपने आप सब व्यवस्था बैठा देंगे। जैसे एक संत थे उनका नाम था चरणदास। ये अलवर की तरफ हुए थे तो इन्होंने सुखदेव जी को अपना गुरु मान लिया कि मेरे गुरु सुखदेव जी हैं। अब सुखदेव जी जाने कब के हुए भगवान कृष्ण के जमाने के वो हुए अभी 200 300 400 वर्ष पहले। तो उन्होंने मान लिया कि मेरे गुरु सुखदेव जी हैं। किसी ने कहा कि भाई अभी अच्छे अच्छे महात्मा दिख रहे हैं इनमें से किसी को गुरु बनाओ कि क्या गुरु मेरा हृदय बड़ा खराब। जो महापुरुष दिखते होंगे सब अच्छे होंगे लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं जमती क्योंकि हर आदमी की क्रिया ही सामने आती है भाव तो सामने आते नहीं। क्रिया होती है भाव हमारे ध्यान में नहीं तो उस क्रिया के पीछे हम लोग यही सोचते हैं कि ये क्रिया इन्होंने ऐसे क्यों की ऐसे क्यों की ऐसे क्यों की तो श्रद्धा नहीं जमती। और जो महापुरुष हो गए उनके वचन सामने रहते हैं वचन बड़े अच्छे हैं क्रिया उनकी सामने रहती नहीं तो दोष नहीं होता उनके अंदर दोष की भावना नहीं होती। सुखदेव जी महाराज आज से हजारों वर्ष पहले हो गए तो उनका कोई दोष हमारे सामने नहीं दिखता उनकी उपदेश उनकी वाणी ये हमको सामने दिखती है तो उसमें हमारी श्रद्धा होती है। इसलिए प्रत्यक्ष महात्मा में श्रद्धा नहीं होती है तो हम जो महापुरुष पहले हो गए उनके वचनों के अनुसार उनमें श्रद्धा कर लेंगे चलो ठीक बात तो उनकी श्रद्धा ऐसी हुई कि सुखदेव जी उनके सामने प्रकट हो गए। वास्तव में सुखदेव जी क्या प्रकट हुए भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आते हैं। जिस व्यक्ति की जिस महात्मा में श्रद्धा हो फिर वो महात्मा प्रकट होते हैं तो वो भगवान ही महात्मा के रूप में आते हैं। अब जैसे अभी किसी की कबीर जी में श्रद्धा हो जाए अब कबीर जी तो इस समय है नहीं तो कबीर जी के रूप में भगवान आएंगे और उसके कल्याण की बात बता देंगे। इसलिए कहा भक्ति भक्त भगवंत और गुरु चतुर नाम वपु एक एक ही चार रूप में है। या तो गुरु बनाओ मत या गुरु बनाओ तो उसके अंदर अश्रद्धा करो मत। तो चरणदास जी ने क्या किया, गुरु नहीं बनाया किसी को कि भाई अश्रद्धा करेंगे तो पाप लगेगा उनको, क्या गुरु हर किसी को क्यों बनाए। तो उन्होंने सुखदेव जी को बना लिया हो गए। और भक्ति है जो हमारे अंदर भक्ति है, ये भी भगवान का रूप है। भगवान की प्राप्ति की जो इच्छा होती है, उस इच्छा में एक भगवान के प्रति आकर्षण होता है। अब उस भक्ति का हम कैसे उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर है। संत एक कथा सुनाते हैं कि एक सेठ थे, व्यापार करते थे पर पैदा कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान ज्यादा होता। तो नुकसान होते 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 ऐसा नुकसान लगा, ऐसा नुकसान लगा कि वो गरीबी की हालत में आ गया। नाम के तो सेठ और हालत होगी गरीब से भी ज्यादा खराब। सामान्य आदमी को कम से कम पेट भरने के लिए रोटी तो मिले, उनके घर में रोटी का संसा पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ी भक्ति भाव रखते थे, वो भगवान से फिर प्रार्थना करने लगे। हे महाराज, हे भगवान, मेरा खर्चा भी नहीं चलता, गांव में सेठ कहलाता हूं, हालत बड़ी खराब हो गई थी, मेरी लाज बचाओ। खूब भगवान से प्रार्थना की। फिर एक पंडित जी के पास गया। पंडित जी से कहा कि पंडित जी महाराज, मेरी हालत बड़ी खराब है, कोई कृपा करो, कोई मुझे उपाय बताओ, किस मंत्र का जाप करूं कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई गोपाल सहस्र नाम का पाठ करो रोज। गोपाल सहस्र नाम है जैसे विष्णु सहस्र नाम है, हजार नाम विष्णु भगवान के, ऐसे हजार नाम गोपाल सहस्र नाम गोपाल के नाम। ठीक है महाराज, पंडित जी ने कह दिया, उसने चालू कर दिया। धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि खाने पीने का इंतजाम हो गया, फिर व्यापार भी ठीक हुआ। करते 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 वो सेठ बहुत अच्छी स्थिति में हो गया, खूब धन हो गया, व्यापार खूब अच्छा चलने लगा। तो रोज गोपाल सहस्र नाम का पाठ करता था। वो पाठ अब ठीक है, क्या है, अब समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, छोड़ छोड़ बैठ के माड़ा फेरता था, वो माड़ा फेरनी बंद कर दी, क्या करें, व्यापार में हमको समय नहीं मिलता। ऐसे करते 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 उसके सारे नित्य नियम छूट गए। भगवान ने तो इतना दिया जितना उसने सोचा नहीं था। उसने दो तीन काम हाथ में लिए, दोनों तीनों कामों में रात दिन दौड़ना और रात चौगना, ऐसा उसको लाभ हुआ। लेकिन एक तरफ धन का तो लाभ हुआ, लेकिन भक्ति का नुकसान हो गया। देखो उस सेठ ने भी कितनी गलती की कि धन का नुकसान तो उसको सहन नहीं हुआ और भक्ति का नुकसान सहन करता गया। क्या है गोपाल सहस्र नाम का पाठ छूट गया, छोड़िए क्या है, परवाह नहीं की। अरे माड़ा फेर देते इसे भी, क्या है, छूट गया, छूट गया, कोई नहीं। माने भक्ति का घाटा सहन करता गया, खूब आराम से सहन किया। भगवान ने देखा कि सेठ की थोड़े दिनों में तो मृत्यु होने वाली है और इसने दरिद्र अवस्था में मेरा खूब सिया था, और यदि मेरे स्मरण को छोड़ देगा तो ये मेरा दोषी हो जाएगा, मेरा दोषी हो जाएगा, क्योंकि मेरे सामने इसने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे यदि ऐसा धन हो जाएगा तो मैं इतना दान करूंगा और इतना पुण्य करूंगा और इतने आपके लिए खर्च करूंगा, दीन दुखियों में लगाऊंगा, नुकसान हो जाए, इसकी मृत्यु में ज्यादा समय भी नहीं, मर जाएगा ये। और सेठ हो गया धन के नशे में अंधा, बढ़िया बिल्डिंग बनाई, बढ़िया विवाह किए, बढ़िया ये किया, और लोगों के बीच में बैठ करके शेखी बता दे, अरे क्या मेरी क्या हालत थी, देखो थोड़े दिनों में मैंने कैसा सुंदर व्यापार करके बढ़िया घर बना लिया है, बाल बच्चों का, लड़के लड़कियों का, कितना अच्छा विवाह किया है, ये किया वो किया, थोड़ा ऐसा तुमको भी करना चाहिए, ऐसे अपने शेखी बताने लगे। भगवान ने देखा कि भाई अब सेठ तो फिसल रहा है और मेरी भक्ति में मैं जो है पट्टा लग जाएगा, तो एक दिन भगवान उस सेठ के रूप सेठ का सा रूप बनाकर आए। सेठ की आदत थी रोज सुबह घूमने जाना और खूब गांव के बाहर चक्कर लगा करके रहना, गांव के बाहर तालाब तालाब के किनारे बैठ करके और उधर थोड़ी बातें चीतें करना, ये करना वो करना, ऐसे करके उसने अपनी सुबह की यही दिनचर्या कर रखी थी। दो तीन घंटा घूम के आता तो सेठ तो गया हुआ था बाहर, सेठ के जैसा का जैसा बन करके और भगवान आए दरवाजे पर। बाल बच्चों ने देखा हमारे पिताजी आएगा, फिर आ गया, फिर कहा अरे इधर आओ इधर आओ, बाल बच्चों इधर आओ। लड़के बड़े जवान हुए, बोलो क्या है कि देखो इस गांव के अंदर एक बहुरूपिया आया हुआ है, बहुरूपिया आकर के और जिस घर में घुसता है ना उस घर में रहने वाला मालिक उस जैसा रूप बना करके और वहां अपनी सब कुछ हुकूमत लगाता है, मेरा घर है ऐसा है वैसे है, तो थोड़ा ध्यान रखना वो रूपया नहीं आ जाए, वो यहां अपने घर नहीं आ जाए, मेरे जैसा रूप बना के आएगा, मेरी जैसी आवाज, मेरी जैसी चाल, मेरी जैसी पोशाक, तो सावधान रहना, मैं तो तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे सामने ऊपर अपने कमरे में जाकर बैठ के काम कर रहा हूं और वो बहु रूपये आए ना तो उसको यहां से जूता मार के भगा देना, इतने हमारे घर में कोई आने की जरूरत नहीं। ठीक है पिताजी, इसमें कौन सी बड़ी बात। पिताजी गए अपने कमरे में, वहां जाकर वही अपना बई वगैरह पटकना देखना करना, वो पिताजी थोड़े भगवान थे, वही सेठों जैसा ऐनक लगा करके चश्मा लगा बैठ कर, अरे उसका तगाजा हुआ कि नहीं कि पिताजी वो तो नहीं हुआ, अच्छा अच्छा ठीक है ये तगाजा करो, ये इसको ये माल है इसका माल लेना, उसको माल दे दो, यूं कर कर। इतने में वो असल में पिताजी थे वो आए, लड़कों ने कहा कौन हो, अरे कैसे बोलते हो बेटा, मैं हूं ना, मैं कौन, निकलो यहां से, अरे मैं तुम्हारा पिता हूं, कौन पिता है मेरा, हमारे पिताजी नहीं हो तुम, हमारे पिताजी अंदर बैठे थे, तुम बहु रूपया हो, निकलो यहां से, अरे बहु रूपया मैं नहीं हूं भाई, कोई आया होगा वो, मैं तो नहीं हूं ना बेटा, मैं सब नहीं नहीं मैं जानता हूं, निकलो यहां से। दरबारों को कह दिया, दरबारों ने उसको लट्ठी दिखा के भगा दिया, वो हक्का बक्का रह गया सेठ कि मेरे ही छोकरे मेरे ही नौकर धक्का दे करके लट्ठी दिखा करके भगा रहे, क्या क्या। तो वो बड़ा चिंतित हुआ, अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास गया, अड़ोस पड़ोस के लोग आए तो لڑکوں سے کہہ رہے بھائی تھارو باپ ہے گھوم پھر رہے رہے تھے میں نے کوئی بڑھ مت کہا تھے آؤ ہمارے ساتھ آؤ اے دیکھو ہمارے کمرہ میں کون بیٹھا ہے ارے تو وہ بہو روپیے ہیں بہو روپیے تب دے ہمارے محلے میں ایک ایک کو سب کو کھا جائے سب محلے والوں نے پیٹ پیٹ کر کے نکال دیا پیٹا اس تب وہ راجا کے پاس گئے راجا سے کہا صاحب جانے کون آدمی آ گیا ہمارے گھر میں نہ تو پڑوس والے وشواس کرتے ہیں نہ یہ وشواس کرتے ہیں بال بچے کوئی وشواس نہیں کرتا ہے اندازہ تھے من بچاؤ کیا نیا کرنے والے والا سیٹھ نے کہا وہ راجا نے کہا کہ سیٹھ جی آپ کو تو میں پہچانتا ہوں آپ نے تو کئی بار راج گھرانے سے پیسہ بھی دیا ہے پیسہ دیا بھی ہے وہ تو ٹھیک ہے بیچ میں کوئی ایسی پرستھتی آ گئی آپ کی آپ کے پاس پیسہ کم ہو گیا لیکن آپ کو گھر سے نکال دیا کیا نکال دیا اور کوئی دوسرا آدمی گھر میں بیٹھ گیا بیٹھ بیٹھ بلاؤ اپنے سپاہیوں کو بھیجا بلاؤ سیٹ کے پریوار والوں کو بلاؤ کون آدمی گھس گیا اس کو بھی بلاؤ اب وہ بھگوان کے ساتھ پریوار پورا پہنچا تو بھگوان نے کہا کہ بولو اندر تھا کئی بات ہے کیا بلایا اب بھگوان دونوں کو دیکھے بھگوان کہیں بھی اصلی سیٹ تمہارے میں کون سا ہے تو بتاؤ اب دیکھ لو صاحب بڑھیا پاک واگ باغ گھوم کر کے گئے بھگوان راجا نے کہا کہ بھائی میں تو خود نرنے نہیں کر پا رہا ہوں اچھا میں کچھ پرشن کرتا ہوں کہاں کرو بھگوان نے کہا کرو کہ تھارے بیٹی رو بیاہ بھی ہوئی ہو کتنا روپیہ لگیا اتنا روپیہ اتنا انار اتنا پیسہ اتنا روپیہ لگیا اس کو پوچھا کہ اچھا تھارے دوسری بیٹی رو بیاہ میں بھی نہ پوچھو پرانی ایسی وہ صاحب بھائی بھی لکھڑا ہے منی یاد کو نہیں تو بھائی کا کون سے پیج میں لکھا ہے بھگوان نے پرشن کیا کون سے بھائی کے کون سے پیج میں لکھا ہے بتاؤ کہ پیج کو یاد رہے ہوئے میں بتا دوں یہ پیج کے اوپر ہی میں لکھے دوسری بیٹی ماری بیٹی من تھا میں اتنا پیسہ لگیا چھوڑا رہے بیاہ میں اتنا لگیا اتنا دہیج آیا بھگوان تھوڑا تھوڑا بتاتے گئے راجا نے کہا ہے نکل آیا رب بھگوان نے یہ بھی پوچھا کہ اچھا یہ سیٹ ہے تو بتاؤ اس کی لڑکی جس سسرال میں دی گئی ہے اس لڑکے کا ماما جو ہے اس ماما کے یہاں گھاٹا لگا تھا کتنے روپے کا گھاٹا لگا تھا بتاؤ وہ کہے کہ لڑکے کے ماما کے یہاں گھاٹا لگا ہمارے کیا مطلب کیا مطلب نہیں میں بتاؤں اتنا روپے کا گھاٹا لگا تھا اچھا بتاؤ آپ کے جہاں جو آپ کے لڑکے دیے ان کے پریوار میں کوئی مرا ہے کہ نہیں ابھی کہ کوئی نہیں مرا پرسوں کی بات ہے بڑے لڑکے کے رابو پریوار میں ایک لگتا تھا وہ مرا ہے وہ اب راجا کو اتنا وشواس ہو گیا کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے بہو روپیہ راجا نے کہا اس کو قید خانے میں ڈالا وہ اصلی جو ہے وہ قید خانے میں ڈالا پھر کسی نے انہوں نے ہی کہا کہ مہاراج قید خانے میں ڈالو گے تو پھر یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے جیلروں سے ان سے مل ملا کر کے ان کو بےمانی سکھائے گا اس لیے اس کو دیش نکالا کر دو ہاں سیٹ صحیح کہتے ہو راجا نے کہا میرے راجیہ میں ایسے بےمان آدمی ضرورت نہیں ہے نکل جا اور کبھی میرے راجیہ میں پیر رکھ دیا نا تو اب کی بار پھانسی ہو جائے گی سیما کے باہر اس کو باہر نکال دیا अब वो बेचारा एकांत में बैठे खूब रोए और भगवान को याद करे। कई दिन हो गए अब जंगलों में भटकते, खाने का पीने का कोई ठिकाना नहीं, आराम से रहा हुआ वो भगवान आए। भगवान आए तो भगवान बड़े प्रेम से मिले, बोलो सेठ क्या बात है, ये क्या बात, क्या हमारे तो ऐसे ऐसे एक आ गया था, वो क्या पता कौन घर में आया, वो मैं ही आया था, मैंने ही तेरा रूप बनाया था। कि क्यों? क्योंकि तूने इतना धन कमाया, इतना तूने मेरे लिए पहले पाठ किया, फिर धन मैंने तेरे को दिया, तू भक्ति को छोड़ने चला गया। भक्ति को छोड़ते 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 तेरी ये दशा हुई कि तू साक्षात हम लोगों को भी जो वचन दिए थे वो भी तूने पूरा नहीं किया। सेठ सबसे बड़ा घाटा व्यक्ति का क्या है, भक्ति का घाटा सबसे बड़ा घाटा, इसकी कभी पूरी नहीं पूर्ति नहीं की जा सकती। पूरा उपदेश दिया भगवान, कहा कि महाराज अब मुझे आप घर पहुंचा दो, अब मैं आपको कभी नहीं दूंगा कि वादा कर सच्ची बात, अब यदि नहीं भूले तो। फिर ये भी कहा गया अब तुम्हारा समय भी नजदीक आ गया है, अभी भी तुम व्यापार में लगे रहोगे तो फिर बेटों के लिए क्या करोगे, बेटों को तो अब व्यापार में लगाओ और खुद मेरे भक्ति में लग जाओ। यदि तो अब एकदम व्यापार से मुंह मोड़ करके और मेरी भक्ति में लग जाए तो मैं तुझे वापस घर पर पहुंचा दूंगा। कहा कि अब मैं भक्ति में लग लूंगा, अब व्यापार जाने और बच्चे जा जाए, भगवान ने कहा जा। भगवान ने कृपा शक्ति से उसके घर पर पहुंचा दिया। अब लोगों को क्या पता क्या अदला बदली हुई है। सेठ ने जाते ही बच्चों से कहा देखो बच्चों हमारी तो वायु बहुत लंबी हो गई, अब ये व्यापार जाने तुम जड़ो, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। ठीक है पिताजी, बढ़िया बात। अब सेठ के मन में आया कि भगवान ने मेरे पर कृपा की है और भगवान ने राजा को भी दर्शन दिए हैं, अब ये राजा का कैसे कल्याण। और इधर भगवान ने मना कर दिया कि ये बात किसी से कहना नहीं, किसी से नहीं कहना। अब सेठ ने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आपका दर्शन सेठ किसने राजा ने भी किया है तो राजा का कल्याण होना चाहिए। मेरे मन में यदि ये भावना रहेगी कि राजा को भी दर्शन तो भगवान ने दिए पर कल्याण नहीं हुआ, इससे मेरे मन में भक्ति कम हो जाएगी, इसलिए आप कृपा करके राजा को दर्शन दीजिए या मुझे आप आदेश दीजिए कि मैं जाकर राजा को ये सारी बात बता दूं। ऐसे उसने प्रार्थना की, प्रार्थना की तो इधर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनकर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा कि राजन जिस सेठ को तुमने निकाला था तुमने अपनी तरफ से सही निर्णय किया है, क्योंकि सेठ मेरे सामने कितनी माया लगा सकता था, ये सब मेरा ही रूप था, वो भक्ति से डिगमगा गया था, लेकिन राजन मैंने तुमको दर्शन दिए, अब उस तुम सेठ को बुलाओ और एकांत में बैठ करके सेठ से पूरी बात सुनो और तुम भी अपना जीवन भक्ति में लगाओ। स्वप्न में दिया भगवान ने दर्शन, सुबह हो जगा उठा नाद होकर के आदमी भेज करके सेठ को बुलाया, क्या आपको महाराज याद करते हैं, चलो एकांत में बैठ गए। और राजा ने कहा कि मेरे को रात में भगवान ने दर्शन दिए, क्या बात है? तो उसने कहा कि महाराज आपको पता ही है मेरे पास खूब धन था, फिर मैं एकदम गरीब हो गया। मैंने रो रो करके भगवान से प्रार्थना की, उस समय मेरी भक्ति खूब बढ़ गई थी, लेकिन मैंने धन के लिए भक्ति की तो भगवान ने मुझे अपार धन दिया, लेकिन मेरा नुकसान हो गया कि जो जो धन बढ़ता गया त्यों त्यों ये भक्ति का धन छूटता गया, भगवान को याद ही करना बंद कर दिया। पाठ पूजा नित्य नियम माला घड़ी सब छोड़ करके एक पत एक प्रवाह से धन के उपार्जन में लग गया। तब भगवान ने मेरा रूप बना करके मेरी संपत्ति पर कब्जा करके और मुझे देश निकलवाला दिलवाया आपसे। वहां भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और कृपा करके कहा कि अब तुम वहां रहो। मैंने भगवान से आपके लिए प्रार्थना की कि आपने भगवान के दर्शन किए हैं, हमारे राजा ने किए हैं, तो इन राजा को भी आप अपने चरणों में ले लीजिए। तो राजा ने कहा कि तुमने हमारा बड़ा उपकार किया है भाई, मुझे रात को भगवान ने ऐसे ऐसे दर्शन दिए, सब बात तुमसे मैंने पूछी, अब मैं भी भगवान की भक्ति में लगता हूं। कहने का आशय यह है कि भक्ति भक्त और भगवंत गुरु, जो भक्ति का रहस्य होता है, भक्ति की कमी होती है, भगवान के प्रेम में कमी होती है, ये सबसे बड़ी आपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन नहीं होई। हनुमान जी ने कहा कि महाराज सीता ऐसे 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 दिन निकाल रही है, तो भगवान ने कहा ओ हो सीता पर तो विपत्ति घनेरी, बहुत विपत्ति आ गई, बड़ी विपत्ति में पड़ी है। तो तुरंत हनुमान जी को याद आया, हनुमान जी चरणों में गिर के महाराज विपत्ति ये थोड़ा ही रावण ले गया, ये विपत्ति नहीं, विपत्ति उसके पास इस समय में इतनी संपत्ति है, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुमार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाय के ही बाट। नाम पाहरु, नाम तो पहरेदार है, राम 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 राम, ये पाहरु मन पहरेदार, आप घर में सब सो जाए पहरेदार वहां जगा हुआ है तो घर में कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही भगवान का नाम यदि जिह्वा पर है तो खतरा नहीं है, तो कोई आदमी कुमार्ग में जा नहीं सकता, कोई कुमार्ग में जान करके भी जाना चाहे तो नाम जब ऐसा प्रभावशाली है उसको जाने नहीं देते। ऐसे ऐसे कई सच्चे उदाहरण हैं। एक चोर था, वो चोरी करता था, पर किसी ने कहा राम राम कह, राम राम करता, अब चोरी की आदत थी उसकी, चोरी की आदत थी तो घर से बाहर निकलता लेकिन वो राम 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 तो वापिस अंदर आ जाता। उसके मन में एक ज्ञान होता है कि मैं चोरी भी करूं राम राम करूं, या तो राम राम को छोड़ दो फिर चोरी करूं। राम राम छूटता नहीं, राम 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 अभ्यास पड़ गया उसके, उसके ऐसा अभ्यास पड़ गया जीभ पकड़ ली उसने, कहा राम राम छोड़ दो चोरी करी, पर जीभ कर जीभ भी ऐसे होने लगे, अब क्या क्या, फिर चोरी के लिए निकले और फिर अंदर आ जाए कि नहीं। जब मुंह के अंदर राम राम बैठा हुआ है तो फिर हाथ से चोरी करूंगा, अच्छा नहीं। फिर विचार आया कि चोरी नहीं करूंगा, मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा तो परिवार कैसे चलेगा, इसलिए करो चोरी कर ले तो जाओ, राम राम तो हो ही रहा है चोरी। फिर वो राम राम करते करते ही बाहर जाता है कि चोरी के लिए, फिर वापिस आ जाता है। ऐसे करते करते उसके मन में आया कि जिस राम राम ने मेरे को चोरी से छुड़ाया है वो राम राम मेरा पेट ही नहीं भरेगा क्या, वो राम राम मेरा घर का खर्चा नहीं चलने देगा क्या, आकर के सो गया। रोज ऐसे ही करता था, आकर सो जाता सो जाता। जब राम राम पर उसको ये विश्वास हुआ कि मेरे मन में चोरी की आती है लेकिन राम राम उस चोरी की क्रिया को करने नहीं देता, तो ऐसे करते 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 एक दिन सपना आया कि तू जहां सो रहा है वहां तू खोद के देख, धन मिल जाएगा। तो चोरी मत करना, तो चोरी करेगा तो ये धन तेरा लुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे स्वप्न में उसको आदेश हुआ। अब ये भगवान है, वो कुछ भी करे, उसका ऐसे मकान था ही सोया हुआ था, वो वहां खोदा तो खोदा धन मिल गया। प्रकार इस धन को धन मिल गया, लेकिन चोरी मत करना। फिर उसने किसी प्रकार से भगवान के भजन में ही मन लगाया, चोरी वगैरह नहीं की, आसन का छूट गया एक नाम के प्रभाव से। तो नाम ने क्या किया, उसकी आदत भी सुधार दी और जितना चोरी करके धन कमाता था उससे कितना ही गुना ज्यादा धन उसको मिल गया। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इसी प्रकार से एक दृष्टांत और देते हैं कि एक जाति का सुथार आदमी संतों में बड़ा प्रेम रखता था, पैसा उसके पास ज्यादा नहीं था, उसकी घरवाली थी बड़ी पतिव्रता, कभी पति को पैसे के लिए और के लिए कभी तंग नहीं किया उसने, जो कुछ मिलता उससे अपना निर्वाह कर लेते थे, बड़ी मुश्किल से निर्वाह होता था उसका, लेकिन पवित्रता से कमाता था, भगवान की और संतों की सेवा करता था। भगवान की सेवा तो नाम जप है, पाठ पूजा है, इससे और संत आ जाए तो संतों को अन्न जल से सेवा करता, जैसी शक्ति थी वैसी। एक बार उसके घर में खूब से संत आ गए तो संतों ने कहा कि भाई हम लोग आज आए हैं, गांव में सुना है कि तुम संतों की सेवा करते हो, भूख लगी हुई है, हम आए हैं संतों की सेवा करना, तो कर दो। अब क्या करें, कुछ भी नहीं घर में इतना। तो उसकी पत्नी ने कहा ये मेरा नथ है, नाक का आभूषण, इस नथ को आप ले आओ और इसके बदले में सामान ले आओ। तो उसने कहा कि मैं आज तो दिया हूंगा लेकिन कल तू वापस मेरे से मांगेगी तो मेरे तो इतनी कमाई है नहीं कि बिल्कुल नहीं मांगा, आपकी मर्जी हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, संतों की सेवा में लग गया और आभूषण का और मतलब क्या निकलेगा, ये धन यही रह जाएगा, इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, मतलब क्या निकला धन का। इससे तो अच्छा है सामान्य चीजें जो रात दिन काम आती हैं इनमें मोह नहीं होता, और सोना चांदी जो काम तो आते हैं कम और मोह हो जाता है ज्यादा, और मोह करके मर जाता है, ये कोई बात नहीं, ये बिक जाए तो बिक जाए, चला जाए चला जाए, आपसे कभी नहीं कहूंगी ठीक है। वो ले जा करके नाक का नथ ले जा करके दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने वो नथ रख लिया और सामान भेज दिया, ले जाओ संत आए सामान ले जाओ, खूब सा सामान दे दिया। उसके यहां कभी उधार भी चला करता था, लेकिन क्या हुआ कि पिछला उधार वापस जमा नहीं कराया तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, अभी मैं अब उधार कहां तक दूंगा बताओ, आप पहले भी हमारे यहां से संत सेवा के नाम से उधार लेके गए हो, पिछला उधार तो चुकाया नहीं, अब नया उधार लेने आ गए, अब आप बताओ कैसे दूंगा। ठीक है, तब उसने स्त्री से नथ मांगे, स्त्री ने नथ दे दिया, तो पिछला उधार भी पूरा हो गया और अब की बार का भी सब दे दिया, सामान का सब पैसा चुकत हो गया, खाता पानी सब बराबर। पर यह नथ दी थी अमानत में, तो सब ले जाकर के दे दिया, संतों की अच्छी पंगत लग गई, संतों ने भोजन कर लिया, इधर तो संत आराम से भोजन कर रहे हैं और इधर ठाकुर जी उसी सुथार का वैसा रूप बना करके दुकानदार के पास जाते हैं, कहते लाओ भाई वो नथ दो और ये पैसा ले, ये देखो पिछला पैसा भी ले लो और ये भी पैसा ले लो। तो कहा कि भाई इतना जल्दी आपके पास पैसा कहां से आ गया, कैसे आ गया, हम किसी में मांगते थे उन्होंने हमको दे दिया, ये कर दिया, अब वो दुकानदार कई देर तक बहसबाजी करे कि भाई तेरे से पिछला पैसा भी नथ दे करके चुकाया गया था, तो अब आपको इससे क्या मतलब है, आप अपना पैसा लीजिए मुझे मेरा नथ दे दीजिए। इधर वो संतों की पंगत हो गई, संतों की पंगत हो गई, संतों ने जय सियाराम कह करके प्रस्थान भी कर दिया और वो सुथार था वो भी अपने काम में चला गया। अब संत लोगों ने जहां भोजन किया था वहां पर उसकी पत्नी गारा गोबर गारा लीप रही थी, तो भगवान स्वयं उस सुथार का रूप बना करके और वो नथ लेकर के और घर पर आए, तो पत्नी वहां पर लीप रही थी, तो कहा ये ले तेरा नथ, बड़ी प्रसन्न हुई, आज ही तो आपने उसको दिया और आज ही आप ले आए, ऐसा आपके पास पैसा कहां से आया है, क्या आ गया कहीं से पैसा आ गया। अब उसको ये पता नहीं भगवान है, देखा मेरे पति ही है तो ले बता कहां रखो, कहीं ताक में रख दो, क्या नहीं नहीं ताक वाक में मत रखो, मेरे हाथ तो अभी बड़े गीले हैं इसमें गोबर में, आप मेरे नाक में पहना दो, मेरे नाक में पहना दो। अब भगवान बैठ करके और नाक खड़ा कर, और जो ही भगवान का ये स्पर्श हुआ आनंद में विभोर हो गई, कहा प्राणनाथ आज तो बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है, हाँ क्योंकि तुम्हारा नथ तुम्हारे हाथ से दूर हो गया, अब तुमको वापस मिल गया तो तुम्हारी चीज तुमको मिलेगी, खुशी क्यों नहीं होगी, इसकी तो कोई याद ही नहीं है, जाने क्यों खुशी हो रही है मुझे, क्या देखो खुशी इसलिए हो रही है कि तुम्हारा इतने दिन का कर्जा था वो कर्जा दुकानदार ने माफ कर दिया और हमने उसका कर्जा सब चुकत कर दिया, जब आदमी का कर्जा चुकत होता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, क्या ये भी मेरे को कारण नहीं लगता है, तब ये हमें पता नहीं थे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, यूं नथ बाबी लगा करके भगवान ने कहा देखो मैं तो मेरा काम पर जाऊंगा, मैं तो मेरा काम पर रोजी का सवार चले गए। उधर से उसका असली पति आया, पति आया और पति ने देखा कहा कि तू दुकानदार से ये नथ ले आई क्या, ये क्या भोली बात करते हो, सोच करके बोलो, बिना सत्य समझे बोलते हैं आप, कभी कोई दुकानदार حساب کیے بنا کوئی چیز دے دے گا؟ ابھی آپ تو دے کے گئے تھے، میں دے کے گیا؟ آپ نے ہی تو کہا، آپ نے میرے نتھیے پہنایا ہے بڑے پریم سے، میں رونے لگ گئی آنند میں بھور ہو کر۔ تب میں نے پوچھا کہ مجھے اتنا آنند کا انوبھو کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ بھائی یہ تمہارا نتھ تم کو مل گیا کہ یہ بھی کارن نہیں ہے، قرضہ اتر گیا کہ یہ کارن بھی نہیں ہے، جانے کیوں آنند ہو رہا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ سے پہنائے ہو اور آپ ابھی گئے ہی ہو، اب آپ ہی میرے سے پوچھتے ہو؟ کوئی پانچ دس دن ہو تو کوئی بات نہیں، آج کی بات اور آج ہی آپ بھول رہے ہو۔ اس نے کہا کہ دیوی میں سچ کہتا ہوں، میں بالکل نہیں آیا، میرے پاس کہاں پیسہ تھا، میں چکت کر دیتا تھا۔ اب وہ جب دیکھا کہ یہ سب بھگوان کی کرپا ہے، بھگوان نے سب کام کیا ہے، تو وہ پتی اور پتنی بھگوان کے آنند میں اتنے ڈوب گئے انہوں نے کہا کہ بھائی بھگوان سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، بھگوان میرا یہ کام کر دو، یہ بھگوان یہ کام کر دو۔ اس نے پتنی سے کہا، پتنی تمہاری جو سنتوں میں سیوا، پرسنتا سے تم نے جو یہ دان دیا، پرسنتا سے نت اتار کے دیا، اس سے بھگوان خوش ہو گئے۔ میرا روپ بنا کر آئے لیکن مجھے روپ نہیں دکھایا ہے، اور تجھے بھگوان نے روپ دکھایا ہے، تیرا بھگوان نے سپرش کیا ہے، اس آبھوشن کا سپرش کیا ہے۔ اس دکاندار کے وہاں پر گئے، یہ ستھار وہاں پر گیا اور جا کر دکاندار سے کہا، لاؤ تمہاری بئی میں دستخط ہے نا؟ یہاں دستخط آپ کر کے گئے ہو؟ دیکھا ویسا کا ویسا دستخط۔ وہ وہاں پر خوب آنند میں ڈوب کر کہنے لگا، تمہاری بئی سفل ہو گئی بھیا۔ یہ کیوں؟ یہاں تو ساکشات بھگوان آئے تھے، انہوں نے سب روپیہ دیا ہے، انہوں نے یہ نت واپس لی ہے، انہوں نے میری پتنی کے یہاں ناک میں نت پہنائی ہے، تم سب تو دھنی ہو گئے، مجھے بھگوان کے درشن نہیں ہوئے۔ کہا کہ آپ نے سنتوں کے درشن کر لیے، سنت اور بھگوان دو تھوڑا ہی ہوتے ہیں، اس لیے بھکتی بھکت بھگوانت گرو چتر نہ ہوئے، تن کے پد وندن کیے ناست وگن انیک۔ اس لیے سنت بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہے پربھو، آپ اپنے پریم کے اندر کتنا بھکتوں کا ساتھ دیتے ہیں، جے باندے سر اسر ناگنر پربل کرم کی ڈوری، سوئی اوچھن برہم دسمتی ہٹ باندھو سکتن چھوری۔ آپ نے نہ جانے کتنے کتنے اسروں کو، دیوتاؤں کو اور بڑے بڑوں کو باندھا ہے، سرپوں کو باندھا ہے، کتنے کتنے کو باندھا ہے، پرنتو ماتا یشودا کے پریم کے اندر آپ سوئم بندھ گئے اور ماتا یشودا سے آپ نے کان کھینچوائے۔ سوئی اوچھن برہم جسمتی ہٹی باندھی سکتن چھوری، خوب باندھتے گئے آیا، انت نہیں آیا، چاروں طرف سے لپیٹ دیا، اور اس سمے آپ رونے لگ گئے، میا مجھے باندھے مت، میا مجھے باندھے مت۔ انت شکتی سمپن آپ کیا کرتے ہیں؟ وشوامبر شری پتی تربھون پتی وید ویتی علی بلیسو کچون چلی پربھتا بر ہوئی تج مانگی بھیک۔ سارے سنسار کو دینے والے آپ، سب کو دینے والے، لیکن بلی راجا کے یہاں جا کر آپ نے بھیک مانگی کہ مجھے میرے قدم سے تین قدم زمین دے دو، مجھے مانگنا۔ تو آپ نے سارے وشو کو دیا ہے لیکن آپ مانگتے دیتے۔ جا کو نام لیے چھوٹت بھو جنم مرن دکھ بھار، امبریشت لاگ کرپا ندھی سوئی جنمیوں دس بار۔ اس پرکار سے تلسی داس پربھو اگر سین کے دوار بیت کر دھاری، विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसी ऐसी आपकी विचित्र बात है। तो भगवान और भगवान के भक्त होते हैं बड़े विचित्र होते हैं। और ये भी बताया गुरु भक्ति भक्त और भगवान पर गुरु बताया गुरु गुरु कैसा होना चाहिए कि जो आदेश जो उपदेश देवे वैसे उपदेश का खुद पालन करे खुद पालन करे। एक बार एक गुरु जी थे गुरु होए करे शिष्य की आस राम भजन पे होए निराश लोभी गुरु लालच चेला घोर नरक में ठेली ठेला। गुरु तो लोभी हुए और चेला लालची हो गए दोनों नरक में जाते हैं। दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले दाव। दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। तो एक गांव के अंदर एक माँ बाप अपने बच्चे से बड़े परेशान बच्चे की क्या गलती वो गुड़ खा जाए उसको गुड़ खाने की बड़ी शौक गुड़ खा जाए उसकी बीमारी हो। तो वैद्य ने कहा कि इसको गुड़ मत खिलाना मीठा मत खिलाना मीठा खिलाओगे तो खराबी हो जाएगी अच्छी बात। लेकिन वो बच्चा क्या करे इधर उधर बड़े मीठा खाई ले मीठा खाई ले तो कहा कोई बाबा जी के पास ले जाओ झाड़ा फूक कर ले। गांव के अंदर उन बाबा जी की बड़ी इज्जत थी बाबा जी को सब गुरुजी बोलते थे। बाबा जी के पास ले गए बाबा जी ने कहा बैठो बोलो क्या बात है ये चेला ये हमारा बेटा है ना तो गुरुजी ये गुड़ बहुत खाता है इसके हो गई बीमारी। वैद्य जी मना करते हैं फिर भी ये गुड़ खाता है अब क्या करे मानता नहीं है कोई आप इसको शिक्षा दो कोई झाड़ा मंत्र लगाओ कि भाई एक महीने के बाद आना एक महीने बाद ठीक है भाई। संत अच्छे थे बहुत अच्छे संत थे तो उनकी बात पर सारा गांव विश्वास करता था चले गए। एक महीने के बाद लाए लाए जब गुरु जी रही झाड़ा और कहा देख बेटा अब तुम गुड़ खाओगे ना तो तुमको गुड़ खाने में जो स्वाद आया उससे तुमको ज्यादा कष्ट हो जाएगा पेट में जाते ही वो गुड़ तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के दोष पैदा कर देगा तो मैंने झाड़ा दे दिया मैंने मंत्र बोल दिए अब उन मंत्रों के प्रभाव से वो गुड़ उल्टा प्रभाव करेगा ठीक है। बच्चे ने फिर गुड़ नहीं खाया माता पिता प्रसन्न हो गए वैद्य की दवाई चली प्रसन्न हो गए कि उसका कोई बीमारी नहीं रही। अब वो बच्चे को लेकर आए कि हे महाराज गुरु महाराज बड़ी आपने कृपा की इसकी आदत एक बात आपसे पूछते हैं कि आपने एक महीने की बात क्यों कही एक महीने के बाद ये तो आप पहले ही दिन बता देते। तो उन्होंने कहा कि देखो आप मुझे गुरु मानते हो ना तो गुरु के द्वारा वही शब्द असर करता है कि जो गुरु स्वयं वैसा आचरण करता है। गुकारस्तंधकारस्या दुकारस्तन निरोधकृत गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। मैं तो खुद अंधकार में था मेरे खुद रोज गुड़ खाने की आदत दाल में गुड़ मिला के खाऊं दाल में गुरु जी ने कहा दाल में गुड़ मिलाऊ साग में गुड़ मिलाऊ यूं गुड़ खाऊं मेरे गुड़ खाने की बहुत आदत। अब मैं इस बच्चे को कैसे खाऊं जब मैं इतनी उम्र वाला भी गुड़ नहीं छोड़ा बच्चे को कैसे कह सकता हूं। तो मैंने एक महीने तक गुड़ नहीं खाने का व्रत लिया और मैंने गुड़ खाना छोड़ा, अब उसके बाद मैं उपदेश देने का अधिकारी हूं, नहीं तो उपदेश नहीं दे सकता। जो स्वयं उपदेश का पालन नहीं करता और दूसरों को उपदेश देता है, उस आदमी की ऐसी दुर्दशा होती है जो एक गुरु की हुई थी। पूछा महाराज, कौन से गुरु की क्या दशा हुई? कि एक गुरुजी थे, उनके कई चेला उनके पास आते रहते थे, रहते भी थे। अरे भोजन करो तो टीका लगा के भोजन करो, हर बात में टोकते रहते थे। एक दिन एक चेला बिना टीका लगाए भोजन करने बैठ गया, तो गुरुजी ने उसको कहा, उठ, टीका नहीं लगाया भोजन करता है तू। खूब डांटा उसको, डांट करके और कहा, जाओ पहले टीका लगा गया उसके बाद भोजन करो। शिष्य उठा, सबके बीच में उठाया उसको, अपमान तो होता ही है, पर गुरुजनों का, माता पिता का जो सबके बीच में अपमान होता है, अपमान करते हैं, ये अपमान बहुत लाभदायक होता है। अपमान अपमान में एक चीज होती है, जैसे कड़वी चीज बीमारी में बड़ी लाभदायक होती है। सुदर्शन चूर्ण है, वो बहुत कड़वा होता है, पर मलेरिया का बुखार है उसको देते हैं, बड़े उसको लेना पड़ता है। और ऐसे कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती। तो माता पिता गुरुजन भरी सभा में लोगों के बीच में किसी का अपमान करते हैं, तो ये कोई भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए कि बड़े लोग अपमान किए। उस चेले ने देखा कि गुरुजी ने सबके बीच में मुझे भोजन करते उठाया है, रजा टीका लगा गया बाद में रोटी, अपमान महसूस किया, फिर बाद में वो बैठ गया, टीका लगाया, भोजन कर लिया। अब वो गुरुजी की ताक में रहा कि देखें, गुरुजी कहते खुद तो करते नहीं है और हमको डांटते हैं। तो वो गुरुजी के ताक में रहा कि देखे गुरुजी कहां क्या कुछ करते हैं। दो चार दिन के बाद एक दिन गुरुजी सब चेलों के साथ पंक्ति में बैठे हुए थे, तो सब चेलों ने टीका लगाया, गुरुजी ने टीका नहीं लगाया। गुरुजी ने टीका नहीं लगाया तो उस शिष्य ने भोजन के समय नहीं, बाद में कहा, गुरुदेव आपने तो टीका लगाया ही नहीं, आपने हमको तो इतनी बात कही। गुरुजी ने उत्तर दिया, खड़े तुम्हें क्या पता, गुरु लोग न जाने किस ख्याल में रहते हैं और क्या क्या खेल करते हैं, हम तो खेल करते हैं, तुम्हें इसका क्या पता। डांट दिया, कहा कि अच्छी बात है भाई, खेल करते हो। थोड़े दिनों के बाद एक आदमी ने गुरुजी को निमंत्रण दिया कि आप हमारे गांव आओ। गुरुजी के पास थी घोड़ी, घोड़ा था तो उसके ऊपर जीन चढ़ाने के लिए उसी शिष्य को कहा कि जा भाई जीन चढ़ाओ घोड़े पर। उसने क्या किया, जीन चढ़ाई पर वो ढीली कर दी, ढीली जीन हो गई। गुरुजी ने ध्यान दिया, गुरुजी बैठ गए उसके ऊपर, घोड़ा दौड़े और वो ढीली जीन करते करते लटक गए। दूसरे घोड़े पर वो चेला भी जा रहा था, एक चेला और भी, एक दो तीन चेले भी थे, वो भी चले जा रहे थे। वो लटक गए तो वो यूं नीचे लटक गए, गुरुजी भी नीचे लटक गए। तो कह रहे शिष्यों बताओ, नहीं महाराज आप तो कोई खेल कर रहे हो, हम क्या, हमें क्या पता, क्या पता। अरे खेल, तुमको खेल दिखता है, मेरी तो जान आपस में। नहीं नहीं, सब खेल करते हैं, खेल कर रहे हैं। तो इधर उधर लोग जा रहे थे, लोग आए तो वे लोग पास में आए तो उन्होंने, शिष्यों ने कहा कि ओ राहगीरों, सौगंध है तुमको, धर्म की सौगंध, हमारे गुरुजी को छूना नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम हमारे गुरुजी कौन से ख्याल में खेल रहे हैं।
اس لیے ہمارے گرو جی کے ہاتھ مت لگانا، پاپ لگے گا۔ اب گرو جی بیچارے سر نیچا رہی اور وہ جین کے اندر پیر آئے ہوئے اور گھوڑا بھی تھوڑا دوڑے، اب گرو جی کیا بولے کتنا بولے، سر مجھے گھبرا گئے گرو جی۔ لوگوں نے دھرم کی سوگند ہو گئے، پرواہ نہیں کی، جا کر گرو جی کے پیر ہٹائے، گھوڑے کو بھی روکا، سب ٹھیک کیا۔ گرو جی نے کہا رہے تم نے یہ کیا کیا کہ گرو جی ہمیں کیا پتا، آپ نے کہا کہ ہم نے جانے کون سے خیال میں رہتے ہیں اور کیسے ہم آچرن کرتے ہیں، آپ کو کیا پتا، ایسا آپ نے کہا ہمیں، ہم کیا کہتے ہیں۔ تب گرو جی نے یہ وچار رکھا کہ منشیہ کو آچرن کے اندر پہلے دھیان دینا چاہیے، جو اپدیش دینے والے ہیں، دوسروں کو بات کہنے والے ہیں، ان کو پہلے پہلے اپنے جیون میں لابھ لینا چاہیے، اس کے بعد دوسروں کو۔ تو بھکتی، بھکت، بھگوانت اور گرو، گرو کے اندر وہ آتا ہے کہ اپنے من سے گرو مان لیا اور من سے چیلا مان لیا، نہیں، جن کے اندر کبھی ہماری اشرسا نہ ہو، جو ایسا کام ہی نہیں کریں گے جسے اشرسا ہو، بات وہ کہیں جو خود کے جیون میں آئی ہوئی ہو، وہ بات دوسروں سے کہیں۔ تو ہم نے خود نے گڑ نہیں چھوڑا تو ہم گڑ کو کہ جو ہے چھوڑانے کے لیے کیسے اپدیش دے سکتے تھے۔ اس لیے ہم 15 دن ایک مہینے کا آپ کو سمے دیے، ایک مہینے کے سمے کے کارن سے ہم نے ہماری عادت سدھاری۔ اپنے اپنا سدھار جس کا ہوتا ہے وہی دوسرے کا سدھار کر سکتا ہے۔ جیسے خود کے ہاتھ یدی سوچھ ہوتے ہیں تو دوسری وستوں کو وہ سوچھ کر سکتا ہے۔ اس پرکار سے گرو کے لکشن بھی ایسے ہی بتائے، بھکتی، بھکت، بھگوانت اور منگل آدی وچار وستن اور انو، ہریجن کو یش گاوتے ہریجن منگل۔ ابھی آگے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کسی ایک بھگوان کے نام کی استھتی کیوں نہیں کی، اس کے کارن آگے بتاتے ہیں۔ بھکتمال کی کتھا ایسی ہوتی ہے جن کا مول ادیش یہی ہوتا ہے کہ ایسی سرل سرل کتھاؤں سے لوگوں کے ہردے میں بھگوان کا بھاؤ پیدا ہو، بھگوان کی بھکتی چھوٹے نہیں، بھگوان کے پرتی ہمارا سمبند اتروتر بڑھتا رہے۔ پورنیما کے شکل پکش کے دن آتے ہیں، اسی پرکار سے بھکتی بڑھتے رہنے چاہیے۔ آج چندرما یہاں ہے، آج یہاں ہے، آج یہاں ہے، ایسا کرتے پورنیما کو پورا چندرما ہوا ہے۔ اور سنسار میں کیسے رہنا چاہیے، اماوسیا کی طرح رہنا چاہیے، مانے کرشن پکش کی۔ ہر مہینے میں 2 پکش ہوتے ہیں، 15 دن کا ایک کرشن پکش اور 15 دن کا شکل پکش۔ کرشن پکش کو کہتے ہیں ودی اور اس کو بولتے ہیں سودی، ارتھات سنسار میں ہم لوگ دھیرے 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 پریم کم کرتے جائیں اور پرماتما میں ہمارا پریم بڑھتا چلا جائے۔ یہ شکشا دینے کے لیے 2 پکش ہے۔ تو سنسار میں تو رہو کرشن پکش کی طرح اور پرماتما میں رہو شکل پکش کی طرح۔ شریمن نارائن 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 شریمن نارائن 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 شریمن نارائن 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 شریمن نارائن۔